الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب في المبادرة إلى الخيرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصحبة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال وغير ذلك قلت وذاك قال فإني على نفسك بكثرة السجود أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں اور مدرسے میں بیٹھ کر سننے والی ساری میری محترمہ مائیں اور بہنیں، رمضان کے آخری عشرے میں یہ سبق چلا تھا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ریاض الصالحین میں انہوں نے بیان کیا، جو میں نے آخری عشرے میں بتایا تھا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین میں باب المبادرۃ الی الخیرات میں سب سے پہلی حدیث قائم کر رہے ہیں حضرت ربیعہ ابن کعب الاسلمی کی. ربیعہ ابن کعب الاسلمی جو ہے یہ اصحاب صفہ میں سے، اصحاب صفہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر کے باہر، یعنی آپ کا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، اس کے پیچھے والے حصے میں ایک چبوترہ ہے جو آج تک بنا ہوا ہے، اور یہ مدرسے کی نشانی انشاءاللہ جب تک مسجد باقی رہے گی یہ نشانی باقی رہے گی. کچھ اللہ کے بندے دور دراز سے ہجرت کر کے آتے تھے، غریب ہوتے تھے، جن کے پاس کھانا پینا کچھ نہیں ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے رات دین 24 گھنٹے اسی چبوترے میں، اسی اصحاب صفہ کی جو پلیس ہے، یہ مدرسہ تھا ان کے لیے، وہیں پر بیٹھے رہتے تھے. کب اللہ کے رسول، ہماری طرح ٹائم ہی نہیں تھا کہ مدرسے کا ٹائم صبح 10 بجے سے لے کر ظہر تک کا ہو یا ظہر کے بعد عصر تک کا، نہیں، بلکہ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے ان کا سبق ہو جاتا، چاہے ایک حدیث ہو چاہے 10 حدیث ہو، چاہے ایک قرآن کی آیت ہو چاہے ایک سورت ہو چاہے کم بھی بات، اور جب کبھی حضرت کا درس ہوتا تھا تو وہ سب کے سب سامنے بیٹھ جاتے تھے. یہ سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کر، اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنا روزگار چھوڑ چھاڑ کر وہاں پر آ پڑے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ دین انہوں نے حاصل کیا، اور یہ چبوترہ گویا اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے، یوں کہہ دو اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، یہی اصحاب صفہ کا مدرسہ ہے جس میں طلباء نے داخلہ لیا تھا. ہمارے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نے، قاری صدیق صاحب نے اصحاب کہف پر سے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں حضرت خیزر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس ساری باتوں کی تفصیل بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. इसमें कोई रजिस्टर नहीं था, नाम नहीं लिखा जाता कि उनकी रोजाना हाजिरी हो, कौन आया कौन नहीं आया। और बाकायदा बुखारी शरीफ उनके पास नहीं, मुस्लिम शरीफ उनके पास नहीं, या कोई जबान सिखाई जाए पहले से, वो तो जबान सीखे सिखाए थे, अरबी का उनको पता था, अरबी का उनके पास इलम था, अरबी का उनके पास इलम था, उनको नावसर ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी शब रोज की तालीम वही निसाब तालीम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाते थे, कुरान की तफसीर और अहादीस मुबारक जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। इस चबूतरे में बैठकर सुबह से शाम तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग सीखते थे, रोजाना की तालीम हुआ करती थी, और रोजाना वो शाम तक कभी 300 की तादाद होती थी, कभी 350 की, यानी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले जो तादाद होती थी, कभी 100 हुई, कभी 150 भी हुई, कभी 300 हुई, कभी 350 तक। इस बारे में उनको फिक्र रहती थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी, आप हमें क्या फरमाते हैं। उनको खाने की फिक्र नहीं थी, खाना कब मिलेगा कहाँ मिलेगा, कोई पकाने वाला होगा नहीं, कोई मतबख खाना वहां पर नहीं था, कोई बावर्ची खाना नहीं था, खाने का कोई बाकायदा इंतजाम नहीं। वैसे अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए इन्होंने फाके बर्दाश्त की बहुत ज्यादा, और सारी बातें लिखी हुई है, कई कई वक्त तक फाके होते थे। मशहूर रिवायत हजरत अबू हुरैरा मौजूद है, फरमाते हैं कभी ऐसा होता था मैं भूख की वजह से निदाल हो जाता था, अनकॉन्शियस जैसा हो जाता था, और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर कभी गिर जाता। लोग ये समझते थे कि मुझे पिट्स की बीमारी, मिर्गी की बीमारी है, हालांकि मुझे मिर्गी की बीमारी नहीं थी। उस जमाने में मिर्गी की बीमारी के लिए यही इलाज करते थे, लोग उनकी गर्दन पर पैर रखते थे, यहाँ उल्टा सुनाकर उनकी गर्दन में पैर रखे ऐसे दबाए तो उनके लिए ही होता था, पाँव रखते तो ठीक हो जाए। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं लोग मेरी गर्दन पर पैर रखते थे ये समझ कर कि मुझे मिर्गी की बीमारी है। उसे मिर्गी का दौरा दूर होता था, लेकिन हजरत को तो मिर्गी थी, वो तो भूख की वजह से निदाल थे, मिर्गी तो यहाँ थी पेट में थी, वो तो पेट में थी। लोग मेरी गर्दन पर पांव रख के जाते थे, दरवाजे के पास सो जाते थे और लोग पांव रख के जाते थे। खुदा की कसम फरमाते सही बुखारी में, खुदा की कसम मेरे ऊपर मिर्गी का दौरा नहीं था बल्कि भूख की वजह से लगी दाद को करता दीन के लिए, दीन के एक एक मसले के लिए, दीन की एक एक बात के लिए। इसीलिए तो वैल्यू बहुत ज्यादा। एक मरतबा मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हजरत ने क्या कहा, फरमाया ओ मेरे भाइयों, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे कानों में, तुम्हारे दिमागों में इस हदीस का कोई वैल्यू नहीं है, ये मसले का कोई वैल्यू नहीं है। हजरत ने खुद मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एक हदीस तुम सुनते हो ना, उस हदीस का सवाब अगर तुम्हें पता चल जाए तो तुम घर छोड़कर मदरसे में पढ़ जाओ। हो गया, फरमाया एक हदीस सुने, हजरत ने फरमाया 40 नफल हज का सवाब, 40 नफल हज का सवाब। ये बात हजरत ने सुना है, कौन मसीहुल्लाह खान साहब अल्लाह वाले लोग थे, फरमाया 40 नफल हज का सवाब एक हदीस सुनने का, और साथ साथ में आगे फरमाया 1000 गोल्ड कॉइन, यानी जो गोल्ड यानी सोने का दीनार जो होता है ना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, 1000 नहीं 10000, 10000 गोल्ड कॉइन अल्लाह के रास्ते में, और 1000 गुलाम अल्लाह के रास्ते में आजाद करने का सवाब हजरत ने बयान फरमाया 92 से पहले। हजरत क्या क्या बात, अल्लाह। और हमारे हजरत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह पाकिस्तान कराची वाले, जिनके पास में 11 साल हजरत ने फरमाया एक मरतबा दो रकात पढ़ी तुमने मगरिब की, सुन्नत पढ़ ली दो रकात बाकी है, सबसे बड़ा मुफ्ती है, क्यों तूने नहीं पढ़ी? मैंने कहा हजरत आपकी बात ज्यादा कीमती है दो रकात से, आपकी बात सुन्नत तो मैंने पढ़ ली दो डबल है, लेकिन आपकी बात शुरू हो गई तो इसका सुनना ज्यादा कीमती है। फरमाया तो सच्चा मुफ्ती है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला की रवायत नकल फरमाई, फिर हजरत ने फरमाया एक मसला सुन ले तो 1,000 नफल रकात का सवाब मिलता है, तो तेरी दो रकात से भी अफसल। लोगों के निगाह में दीन का वैल्यू नहीं, दीन की कदर नहीं है कि दीन कितनी बड़ी नेमत है। जमात पे निकल के अल्लाह के रास्ते में जो आई है ना, इनको पता है दीन में अल्लाह के रास्ते में जाने का कितना वैल्यू है, क्या कदर है उसकी, उनको पता है। लेकिन जहां पर लोग बैठते हैं वहां जहां मजमा हो, जहां पर ये बातें बयान की जाती है, लोगों के सुन लेंगे। हमारे हजरत मौलाना अशरफ अली साहब की बात है, आग जलती है ना तो एक सामने बैठा है और एक उस कोने में बैठा है। आग के अंदर में दो चीज है, गर्मी देना रोशनी देना, गर्मी देना और रोशनी देना। फरमाया जो मेरे सामने बैठेगा उसको गर्मी भी मिलेगी रोशनी भी मिलेगी, जो कोने में बैठेगा जो दूर रहेगा उसको रोशनी तो मिलेगी आग की गर्मी नहीं मिलेगी। फरमाया ये तो गर्मी जो है अल्लाह ने जिब्राइल के वास्ते से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा ताबीन करते करते हमारे दिलों तक पहुंचाई है, और ये गर्मी हम तुम्हें दे रहे हैं लेकिन तुम गर्मी देना नहीं चाहते। इस बात को बहुत अजीब अंदाज में समझाए, तो ये चीज सहाबे किराम को पता थी। अबू हुर्रा फरमाते हैं मिर्गी की मुझे बीमारी नहीं थी, मैं तो भूख की वजह से निथाल था और पड़ा रहता पर जब गिर जाता था। तो ये उन्हीं का एहसान अजीम है ना, इसीलिए तो आज अहमदी हदीस पर सबसे ज्यादा हदीस बयान करने वाले अबू हुर्रा है, ये उन्हीं की वो कुर्बानी है। जब आदमी हमारे हजरत फरमाते हैं जितनी होगी तुम्हारी कुर्बानी इतनी होगी रब की मेहरबानी, तकी मुख्तर साहब के अल्फाज है, जितनी तुम्हारी कुर्बानी होगी इतनी अल्लाह की मेहरबानी होगी। अब आदमी कुर्बानी ही ना दे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कम कुर्बानी दी है, सहाबा ने क्या कम, जितनी मेरी कुर्बानी होगी इसका असर मेरे खानदान पर पड़ेगा, इसका असर लोगों पर पड़ेगा, इसका असर मेरे दोस्तों पर पड़ेगा। कहां है वो असहाबे कहाब में, सात पीढ़ी से पहले बाप ने कुर्बानी दी, सात पीढ़ी के बाद उसके बच्चे की हिफाजत के, घर की हिफाजत के लिए, सामान की हिफाजत के लिए, सोने की हिफाजत के लिए अल्लाह ने हिजरत इस्लाम को भेजा, जाओ उनकी दीवार सीधी कर दो ताकि बच्चे बड़े होकर अपना माल निकाल ले। तो यहाँ पर मुफस्सिर कबीर इमाम गाजी रहमतुल्लाह अलैहि इस तफसीर को बयान फरमाते हैं, और साहिब रुहुलमानी जो हमारे हजरत फरमाते हैं जबकि मख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैहि साहिब कुनिया की तफसीर मुझे बड़ी पसंद है, अल्लामा रुहुलमानी की, अल्लामा आलूसी बगदादी की, फरमाया करते थे इनकी तफसीर सारी तफसीरों में बेहतर है, जो अभी में कई जिल्दों में उन्होंने लिखा है कि ये बाप की बाप दादा की कुर्बानी थी, उस कुर्बानी का असर आज सात पीढ़ी के बाद नजर आता है। तो मेरी कुर्बानी जितनी होगी इतनी अल्लाह की मेहरबानी होगी, सहाबे किराम की कुर्बानी आलीशान, तो उनका असर आज तक हम पर है, आज तक है। देखो कितने मदरसे हैं, कहाँ का बुखारी मुस्लिम तिर्मिजी, कहाँ का जमात गुमरी, ये असर है उनकी जितनी, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तिर्मिजी शरीफ में, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा ने एक मुट्ठी जब, एक मुट्ठी जब मेरे अल्लाह के रास्ते में अगर खर्च किया है तो उनका एक मुट्ठी जौ खर्च करना कयामत तक आने वाले लोगों के लिए और पहाड़ बराबर सोना खर्च करने से ज्यादा है। तिर्मिज़ी शरीफ में किताबुस सदकात में लिखा है, ये सहाबे किराम की कुर्बानी थी कि इनकी छोटी चीज कितने काम कर गई। तो जितनी कुर्बानी हमारी होगी इतना फायदा हो, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने सन 7 हिजरी में इस्लाम लाए, 8, 9, 10 में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाता है, 2-2.5 साल मिले हैं, लेकिन 2-2.5 साल में इन्होंने वो कुर्बानी दी कि 5,374 हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इतने किसी सहाबा को याद नहीं। जितनी कुर्बानियां दी, ये कुर्बानियां दी, जितनी आप ये कुर्बानी देंगे इतनी अल्लाह की मेहरबानी होगी। तो यहाँ पर उन्हीं अस्हाबे सुफ्फा में से एक साहबी है जिनका यहाँ पर इमाम नवी रहमतुल्लाह अलैहि जिक्र फरमाते हैं अपनी किताब में, अबू फिरास रबिया इब्ने असलमी, ये अस्हाबे सुफ्फा में से है। ये कबीले बनु असलम से ताल्लुक रखते थे, कबीले बनु असलम से ताल्लुक, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं आपका खादिम बनना चाहता हूँ, क्या फरमाया, मैं आपका खादिम बनना चाहता हूँ। इसलिए कि बाज मरतबा दुआ दी जाती है, बाज मरतबा दुआ दी जाती है, दुआ देना है लेकिन दुआ लेना है। हमारे अकाबरीन फरमाते हैं दुआ लेनी चाहिए सबको, क्या दुआ करना दुआ करना दुआ कर, तो दुआ करते रहे, लेकिन जब किसी अल्लाह वाले की खिदमत में रहे और उनकी दुआ मिल गई, उनकी दुआ मिल गई दिल से, तो काम कर। ये दुआ किसने ली है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने तहज्जुद के वक्त पानी रख लिया। इमाम बुखारी मुस्तकिल चैप्टर कायम किया इस पर दुआ लेने के बाद, देखो बच्चा है उन्होंने पानी रख दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा, वुजू किया आपने, फरमाई दबा बुलाया, क्या दुआ रही, अल्लाह कुरान व ताबीर, पहले ने कुरान भी सीखा, कुरान की तफसीर भी सीखा, कैसे सीखी, कि आज तक मशहूर है रईस मुफस्सिरी, रईस मुफस्सिरी, दुआ दी जाए, दुआ दी जाए। इसीलिए हमारे हजरत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक मरतबा उमरा में थे, तो हजरत ने क्या फरमाया, फरमाया तुम लोग उमरा करने आए हो, उमरा करने आए हो किसी अल्लाह वाले की खिदमत में, एक चिल्ला दो चिल्ला लगा के फिर जाओ उमरा करने के लिए, फिर देखो तवाब में तुम्हें क्या मजा आता है। बातें बहुत अच्छी होती है, आप लोगों ने तो सुनी होगी, बहुत अजीब अजीब बात है। एक मरतबा हजरत ने फरमाया किसी ने हजरत को सवाल किया, अल्लाह इतना बड़ा है तो उसका काबा भी इतना बड़ा होना चाहिए, काबा का मकान जो है वो बड़ा होना चाहिए था, अल्लाह इतना बड़ा मकान छोटा सा, तो हजरत ने क्या फरमाया, अल्लाह चाहता तो तुम्हारे लिए काबा बना देता मक्का से लेकर जिद्दा तक का, मक्का से लेकर जिद्दा तक का बना सकता था, उसके लिए क्या मुश्किल था, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल, लेकिन बंदा तेरी रियायत करके अल्लाह ने छोटा बनाया ताकि मेरा बंदा कमजोर है बराबर तवाब कर सके। और फिर बात फरमाया, हजरत ने अजीब बात सुनाई, सुभान अल्लाह, फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से उठा लिया गया, इसलिए कि मक्का वालों ने नबी की कदर नहीं की, तो फिर मदीना वालों ने कदर की, तो अल्लाह ने उनका मस्कन और उनकी कब्र भी मदीना मुनव्वरा में उठाई, और कयामत के दिन उठेंगे मदीना वालों के साथ। तो जो अल्लाह के रास्ते में चलने वाले हो, जो अल्लाह के रास्ते में काम करने वाले हो, उनकी कदर करेंगे तो अल्लाह उनकी नेमत को वहां बाकी रखेंगे, वरना उस नेमत को क्या है उठा। अच्छी जी बात, एक मरतबा हजरत ने फरमाया किसी ने सवाल किया, हजरत ये क्या बात है तवाफ में हर चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल अयमन फल अयमन की है, दाहिनी तरफ से की है, तो तवाफ तो इधर से शुरू होना चाहिए, क्लॉक वाइज होना चाहिए, जैसे क्लॉक चलती है, ये क्या एंटी क्लॉक वाइज हो गया कि तवाफ उल्टा करवाया जा रहा है। सारे काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं करते थे, आप कपड़ा पहनते थे, जूते निकालते, हर चीज को खाते थे, हर पानी पीते थे, हर चीज को आप दाहिनी तरफ शुरू करते थे, ये क्या है तवाफ को उल्टा करवाया जा रहा है, जब अल्लाह का मकान है, अल्लाह के मकान को तो सीधा होना चाहिए। तो हजरत ने फरमाया असल में तुम्हारा दिल दाहिनी तरफ नहीं है, बाईं तरफ है, क्या कहा, तुम्हारा दिल बाईं तरफ है, तो तुम अगर इधर तवाफ करोगे तो खोरा दिल तुम्हारा काबा से दूर हो जाएगा, अल्लाह चाहता है मेरा बंदा उसका दिल मेरे काबे से लगा रहे, अगर मैं देखना चाहता हूँ उसके दिल में मैं अल्लाह हूँ मेरे लिए तवाफ करता है या किसी और के लिए करता है। और फिर आगे फरमाया ये चक्की है, क्या फरमाया, ये चक्की है उसमें पीसो अपने आप को, सात चक्कर में पीसो, अल्लाह के सामने रोटी पीसो, कि अल्लाह तुझे तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन तेरे घर पर तेरी तजल्ली उतरती है, मैं तेरे घर को देखकर सबर, यानी मैं तेरे घर को देखकर क्या कर लेता हूँ, थोड़ी आसानी मुझे क्या कहते हैं सुकून मिल जाएगा तेरे घर को देखकर। तो फरमाया फिर उसके बाद जैसे तुम लोग हजरत ने फरमाया साउथ अफ्रीका में ये तुम्हारे यहाँ कपड़े धोने का मशीन है कैसे घूमता है, कभी इधर घूमता है कभी इधर घूमता है, तो कैसे कपड़े साफ हो जाते। फरमाया इसी तरह तुम अल्लाह के घर की चारों तरफ घूमोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिल के सारे गुनाह पेशाब कर। और किसी ने हजरत से पूछा हजरत मताप में ज्यादा में दुरूद शरीफ पढ़ू या फिर अस्तगफार पढ़ू, शरीफ ज्यादा पढ़ू या अस्तगफार पढ़ू, ये बहुत सारी काम की चीजें होती। तो हजरत ने फरमाया तेरे कपड़े पहले हो जाए तो तू पहले आयन करेगा या धोएगा, तेरे कपड़े मैले हो जाए तो पहले तू आयन करेगा या उसको धोएगा, पहले धोऊंगा, ऐसे आयन करेगा तो फिर तू धोने वाला नहीं है। कहा पहले तेरे दिल को तेरे बदन को इस्तिगफार से धो ले फिर उसके ऊपर दुरूद शरीफ की आयन कर ले। क्या कहा, पहले तेरे दिल को और तेरी आंखों को तेरी कानों को इस्तिगफार से धो ले अल्लाह के सामने रो ले फिर उसके बाद तू उस पर दुरूद शरीफ की आयन कर, पर मैं पहले यहां इस्तिगफार कर फिर मदीना मुनव्वरा जाकर तू आयन कर, फिर देख तेरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिगफार में तेरा नाम भी शामिल। जो अल्लाह ने कुरान में कहा जब जालिम जुल्म करने वाले तुम्हारे पास आ जाए तो आप उनके लिए इस्तिगफार की, ये आयत कयामत तक के लिए बाकी है। हमारे हजरत की बातें बड़ी अजीब हुआ करती, फरमाया कयामत तक के लिए आयत बाकी है हुक्म बाकी रहेगा, जैसे वो मिशन में हासिल एदा हसद कयामत तक के लिए आयत बाकी रहेगी कुरान में, वहां तक हसद भी बाकी रहेगा। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जिंदा है, जो आदमी सलाम पेश करता है तो वहां जाता है ना, तो क्या है इस्तिगफार करके जाता है। इस्तिगफार अल्लाह शफी अहमद उस्मानी और मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह और तीसरे कोई आलिम थे जिनके बारे में लिखा है कि वो पहले तवाफ कर रहे थे, तवाफ में दिल नहीं लग रहा था, तवाफ में दिल नहीं लग रहा था, तो उन्होंने दोबारा सफर किया मदीना मुनव्वरा का और कसरत से इस्तिगफार किया। शिकायत में इस्तिगफार करेंगे और आगे क्या फरमाया आप भी उनके लिए इस्तिगफार कीजिए, दो चीज मिल जाएगी, आपका इस्तिगफार होगा और फिर इसलिए मैं कहा करता हूँ जो जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा, हमारे हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है पहले अच्छी तरह अपना कत्ल कर ले, कपड़े पहन ले, इसलिए कि तू कहाँ जा रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। बादस खुदा बुजुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर किसी का दर्जा है तो आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उनके दरबार में कोई जाता है, हमारे हजरत फरमाते हैं दुनिया वालों के दरबार में जाते हैं कहीं मुकदमा के लिए किसी लिए जेल में या पुलिस स्टेशन पर, तो अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं, शादियों में जाते हैं अच्छे कपड़े पहनकर, मेरे नबी के सामने तुम गुस्ल करो अच्छे कपड़े पहनो और फिर दो रकात नफल पढ़ो, अगर मकरूह नहीं है नफल कह सलामत पढ़ो, क्या पढ़ो सलातु तौबा पढ़ो, और सलातु तौबा पढ़ने के बाद 70 मर्तबा अल्लाह वसल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन नबी उम्मी, जो ये दुरूद शरीफ है ये दुरूद शरीफ जुमा में पढ़ा जाता है, ये दुरूद शरीफ में फजीलत मालूम नहीं है, लोग ज़ईफ ज़ईफ से हर चीज में ज़ईफ 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 करते हैं। हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़े आदिम आए थे बिहार के, ये हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के अजल्ले खुलफा में से थे, जैसे हमारे शेख यूनुस साहब सहारनपुरी जो हजरत मौलाना ज़करिया साहब के बहुत बड़े शागिद रहे और उनकी मौजूदगी में बुखारी शरीफ भी पढ़ा सहारनपुर में, मेरे शेख होते हैं के इंतकाल हकीम साहब के इंतकाल के बाद उनसे बैठ हुए शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ हदीस कबीर थे, वो पूरे दुनिया के उस जमाने के अमीरुल मोमिनीन थे फिल हदीस। तो ये इसी तरह ये बिहार के भी थे, उन्होंने मुझे कहा कि एक मरतबा जुमा की नजर उनका बयान था, उन्होंने बयान में कहा कि मैं कसरत से दूसरे पर आप में मैंने नबी अकरम से कसरत से दूसरे पढ़ता, मैंने खाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद, तो मैंने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसा दुरूद बतलाओ जो मैं ज्यादा कसरत से पढ़ूं, पर मैं जाओ सहारनपुर ज़करिया जो दुरूद पढ़ता है वो पढ़ा करो, सुना ज़करिया जो दुरूद पढ़ता है आप कभी आप बेटी पढ़ना है, आप बेटी हमने तो हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े बड़े खुलफा को देखा है, वो जब वक्त मिलता था तो आप बेटी पढ़, और आप बेटी में इतना नूर है। उसमें ये भी लिखा है कि ज़करिया अल्लाह के नबी सल फरमाया, ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत सारी बातें लिखी है, बहुत सारी, कि आप कुतुब छुपाना नहीं, मैं तुम्हें कहता हूँ उसको जाहिर करो, अब डाल कुतुब। हमारे शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अजीब करामत मिल रही थी, हज के मौके टेंट ही नहीं मिल रहा था, और उनको टेंट नहीं मिल रहा, तो तीन चार साथी थे, तो एक छोटा सा टेंट था, एक दो बात उसमें सोच तो कहा मुझे इसमें ले जाओ, इसमें ले जाओ। उस हजरत तो बहुत उम्र भी हो गई थी, 82 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, ये बहुत अच्छा नहीं देखे होंगे आप। शेख यूनुस साहब हजरत मौलाना ज़करिया साहब अपनी मौजूदगी में उनको कितने साल साल तक वही सहारा और मुझे इस पर ले जाऊ, तो एक बुढ़ा आदमी सफेद चादर पहनी हुई थी अच्छी तरह, बस वही खिदमत करता रहा, इबादत करता रहा, हजरत की खिदमत करता रहे। जब शाम पे बस में बैठा मुस्तलिफा में जाने के लिए, कौन है कौन है, तो फरमाया ये कुतुब था, सॉरी ये अब्दाल, ये कौन है अब्दाल, अल्लाह पाक ने उसको। फिर हमने कहा था तुम्हें बता दे, हम भी दुआ का कह देते, फरमाया ये तो छुपाने की चीज है, हर चीज नहीं बतलाई जाती, ये तो उनके उस्ताद मौलाना ज़करिया साहब कैसे हो। लिखा है उनकी तारीख में मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह 10 साल तक पाइटी की तरफ बैठते थे, पाइटी की तरफ, पाइटी क्या मतलब, जहां साहब सुफा से गुजर कर थोड़ी जगह, हम तो बैठे उस उधर पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैर होता है, इसको पाइटी को पैर की तरफ, अगर उमर सिद्दीक का पैर है तो उमर अल्लाह का पैर है उधर, तो वहां जो थोड़ी जगह है जहां पर अंदर साफ करने वाले का कमरा है, उस कमरे के सामने जगह है, अभी तो बंद कर, तो वहां उस जमाने वहां 10 साल तक असर से लेकर ईशा तक हजरत मौलाना ज़करिया साहब बैठकर दूर चलता था, 10 साल तक आखिरी उम्र की बात बैठक और पढ़ा करते थे। एक मरतबा एक आदमी ने एक रियाल कॉइन ऐसे डाला हजरत के इधर डाला, हजरत ने लिया, आखिर सब जो भी फिलहाल बुखारी से पढ़ाते या उनके तो वहां से किसी को दिया, कहीं तुम्हारे पास रखो, रूम में जाकर मुझे दे देना, कमरे पर जाकर मुझे दे देना। जब कमरे पर पहुंचे रात में तो कहा मेरा रियाल लाओ, तो कहा एक ही तो रियाल है, एक ही तो रियाल है, पर मैं नहीं, किसी ने मुझे मदीने का कुत्ता समझ कर दिया, फकीर समझ कर दिया है, इसको मैं अपने पास रखूंगा, मदीना मनोवरा का फकीर समझ कर मुझे दिया है, अपने पास रखने पर कैसी हालत होगी। 10 साल में 2 मरतबा सिर्फ चेहरे के सामने गए सलाम पेश कर, 2 मरतबा कहा मैं खुलेगा ज़करिया अल्लाह के नबी के सामने कैसे जा सकता हूँ, ये चेहरा बताओ, ये चेहरा बताओ, मैं कैसे जा सकता हूँ। सिर्फ 2 मरतबा वो भी गालिबन हजरत मौलाना अरशद असद मदनी साहब, हजरत अरशद नहीं तो उसके असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह आए थे, और पाकिस्तान के एक सैयद कोई आलिम थे, 2 मरतबा वो उमरा के लिए हज के लिए आए थे, तो उनके पीछे पीछे कंधा देकर इस तरफ पीछे पीछे सलाम पेश करके निकल गए, और फिर फरमाया तुम दोनों सैयद हो, क्या कहा तुम दोनों क्या है सैयद हो, तो नबी अपने बेटे को जरूर देखेंगे, तो बेटे के साथ उसके दोस्तों को भी मां को दुआ कर लेंगे, इसलिए मैं पीछे पीछे आया हूँ तुम्हारे, वरना ज़करिया इस चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है। और मुफ्ती शमी साहब की बात तो मुफ्ती साहब सुनाया करते, बार बार सुनाते, कई बार सुनाया है। जब वहां पर पहुंचे तो दूर से इधर सलाम पेश करने के 2 रास्ते, एक ये है और एक पिलर के बाद वाला है, तो पिलर के बाद वाले दूर खड़े होकर सलाम पेश करते थे रोज आना, तो फिर और दिल में तमन्ना करते थे अल्लाह पर ये लोग करीब करीब पहुंच जाते हैं सलाम पेश करने, लेकिन मैं डरता हूँ साहब तुम्हारे कह रहे मैं डरता हूँ करीब जाने से, तो कहा मुझे आवाज आई कि मोहम्मद शफी कब तक दूर रहोगे, करीब आओ कब तक। ये बात सब लिखी है, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। कब तक दूर आओगे, दूर रहोगे, मुझसे करीब आओ। फिर फरमाया कि जो दूर है लेकिन मेरे सुन्नत का पाबंद है वो मुझसे करीब है, और जो करीब है लेकिन मेरे सुन्नत का पाबंद नहीं वो मुझसे दूर है। ये उस हदीस की तरफ इशारा है बुखारी। तो मैं कुछ सुना रहा था कि ये बात कहां से कहां चली गई, याद है वो आगे असहाबे सिफा तो है, दुरूद शरीफ की बात है। तो वो आए कहां, ज़करिया जो दुरूद पढ़ते वो पढ़ा करो। तो मैंने सफर किया सहारनपुर का बिहार से, मैंने हजरत से पूछा हजरत इस तरह का ख्वाब है, सलाम सलाम सेलेक्ट होने के बाद फरमाया ज़करिया के पास तो कोई खास दुरूद नहीं है, वही एक दुरूद है जो ज़करिया 25 साल से असर के बाद पढ़ता है, 25 साल से असर के बाद पढ़ता है। और इसी दुरूद की तरफ अल्लाह के हबीब ने इशारा किया, आपको इसको पढ़ते रहो। इसको क्या है, पढ़ते रहो, तो जुमा के बाद असर के बाद पढ़ गए 80 साल के गुनाह माफ होते, इसको पढ़ते रहो। तो हमारे अकाबिर है, फरमाया क्या, पहले गुसल दो अपने आप को। तो ये मुफ्ती शफी साहब वगैरह आए मदीना मुनव्वरा, फिर ज्यादा रोए वगैरह, उसके बाद दोबारा गए तो फरमाया अब तवाफ पे बसा। तो हमारे हजरत फकीर मकबूल साहब फरमाते थे कि तुम मेरे पास रहो या किसी अल्लाह वाले के पास रहो जिसके साथ तुम्हारा ब्लड ग्रुप मिलता है, क्या फरमाते हैं, ब्लड ग्रुप मिलता है उसके साथ रहो, फिर उसके बाद तुम उसके बाद देखो नमाज में देखो कैसी मजा आती है, फिर देखो रोजे में कैसी मजा आती है, फिर देखो तुम्हारी बातों में क्या क्या मजे होते हैं, ऐसी बात बयान फरमाते थे। तो ये हमारे अकाबिरीन है जिन्होंने मेहनत की है। ये अबू फराश रबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मैं अल्लाह के रसूल आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ। बात करी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक, जो भी काम हो हजरत आप मुझे बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। उनके अंदर में दो चीज की उम्मीद थी कि अल्लाह के नबी से मुझे वो मिल जाए, दो चीज, अल्लाह वालों की खिदमत में रहने से कुछ अच्छी चीज की, एक है कि दुनिया की लालच होती है, दुनिया की लालच बहुत सारी होती है कि मैं मशहूर हो जाऊँ, अपना हो जाऊँ, या अपना अल्लाह वालों की कुछ और चीज, सहाबे किराम, एक ये है कि मुझे अल्लाह के नबी की खिदमत का मौका मिलेगा, नबी की खिदमत में कहूँ बड़ी शहादत है ये। दूसरी बात यह है जितना खिदमत का मौका मिलेगा इतना मैं अल्लाह के नबी की ज़ियारत करता, अल्लाह के नबी को देखता और आपको देखूंगा तो मुझे ज्यादा बात, मेरा दिल खुलेगा आपके, ऐसे ज्यादा जानने का मिलेगा, आपके हालात के ज्यादा मुशाहिदा होंगे। एक आदमी खादिम साथ में रहे तो उनको सफर सफर में हजर में सब पता है कि भाई कैसे थे क्या नहीं है किस तरीके से, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम बनने का इस हदीस में जो बयान किया। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुज़ू की जरूरत पेश आई, वुज़ू की जरूरत, तो जल्दी से पानी लोटे में भरते थे और खिदमत में ले जाते, ये आप ये अबू फराश के समझ आए, वुज़ू ला वुज़ू करवाना यानी वुज़ू का पानी लोटे में भरना और उसको क्या है सामने रखना। तो वो फरमाते कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं दरख्वास्त करता था, या रसूलल्लाह मेरा दिल ये चाहता है कि मैं आज की रात आपके पास गुजारूं, आपके करीब में सो जाऊं। गुजरना तो नहीं होता है, उन्हें देखना है कि आपकी रात की इबादत क्या है। ये था उनको, ये थे उनको लालच आखिरत, दिल जिसको कहते हैं, ग्रीडी नहीं, ग्रीडी दुनिया का होता है, दिल जिसको कहते हैं आखिरत की उम्मीदें होती है। तो एक मतलब आप, मैं चाहता हूँ रात आपकी खिदमत में रहो, मुझे इजाजत दे दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाजत दे दी, ठीक है पूरा दिन आप मेरे यहाँ सो जाओ। तो हस्ब मामूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के लिए उठ गए, तो मैं भी उठा। मुझे याद पड़ता है यही बात हमारे मौलाना अब्दुल्ला पापोद्रमी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इंडिया में फलाह दारेन तरकेसर है उसके मोहतमिम साहब, उन्होंने कहा मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह हमारे गुजरात तशरीफ लाए, तो मैंने साहेब मेहमान मेजबान से कहा आपकी रात जिस रूम में हजरत सोएंगे उसके कोने में मैं भी सो जाऊंगा, मुझे सोने दीजिए। कहा नहीं नहीं, तुम खांसी करोगे, तुम आवाज करोगे तो हजरत की आंख खुल जाएगी, हजरत तो पूरा सफर करते बहुत कम सोने का मिलता है, तो मैं नहीं, मैं चुपचाप पड़ा रहूंगा कोने में, कोने में पड़े। कब ठीक है, सो गया मैं। हजरत ने हजरत के लिए अच्छा बिस्तर बिछाया, फरमाया नहीं ये बिस्तर पर मुझे नींद नहीं आई, मेरा बिस्तर गाड़ी में से, हजरत देवबंद से अपना बिस्तर लेकर आए थे, और भी कैसा घास बड़ा हुआ, उसमें घास पड़ी हुई थी और तकिए में भी घास पड़ी हुई थी, हमारी तरह वो कॉटन वुल वाला नहीं, रो वाला नहीं घास, और उस पर हजरत सो गए। मेरी तो आंख लग गई, वो हजरत अब्दुल्ला साहब कहते मैं तालीम बन चुका था, एक तो हजरत को देखना जिन्होंने 18 साल तक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इन्होंने क्या है बुखारी शरीफ पढ़ी है, तो मैं देखना चाहता हूँ हजरत के कुछ अमल। मेरी तो आंख लग गई और एकदम मेरी आंख खुली तो देखा मुसल्ले पे बैठकर कोई इतना रो रहा है जैसा कि हांडी में गोश्त उबल रहा है, आवाज आती है पानी के, गर्म पानी के उबलते की आवाज आती है। तो हजरत तो मुसल्ले पर रो रहे, कितनी देर तो हजू पड़ी होगी और रो रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वाले थे जिनकी रातें भी अल्लाह के लिए अल्लाह के सामने उम्मत के लिए रोने में जाती उठ जाती, या रात में आंख खुल जाती रो के उम्मत के हालात के ऊपर, जैसे हमारा उठ के रो के उम्मत के लिए, जैसे हमारा इंडिया सब रमकल की बात कैसे सुनाऊ कोई वक्त नहीं, अजीब अजीब बातें, रातों में रोना, रातों में रोना और अपने आप को कीमती बनाना। एक मेवाती आया तहज्जुद में, वो लोग तहज्जुद पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, उठे कि नहीं उठे, मरकज पर मेवाती खत्म हो गया, मेरा एक बेटा है उसके लिए भी दुआ कीजिए ऐसी जैसे आपने दुआ की है मौलाना यूसुफ साहब, यूसुफ साहब कैसे बने कीमती बने। फरमाया यूसुफ के लिए तो उसके दादा दादी नाना नानी रातों का रोना है, तब जाकर एक पर्द ऐसा बना जो उम्मत के लिए काम आए, दुआएं रातों में उठकर अपने लिए अपनी औलाद के लिए और पूरी उम्मत के लिए और फिर दिन में उम्मत के लिए फिर उम्मत के लिए काम करना, ये काम इस सुन्नत रसूल जाकर इन्होंने अल्लाह के सोने देंगे। फरमाया ठीक है मैं सो गया। अब जब आप नमाज के लिए उठे तहज्जुद की तो मैं भी उठ गया, जल्दी जल्दी लोटा लेकर आ गया। एक बात रह गई पीछे तो मुझे सुनानी, सलाम के सलाम पेश कर, सलाम पेश करने के बाद जोर से एक मरतबा कलमा पढ़ो, थानवी रहमतुल्लाह लिखा है क्या पढ़ो जोर से अश जैसे अस्सलाम अलैकी या रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैकी या हबीब अल्लाह, तुम सलाम पेश करो, السلام علیکم یا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، السلام علیکم یا سیدنا عمر، اس کے بعد یا درود شریف کے صلوات و سلام کے فوراً بعد اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان سیدنا محمد عبد اللہ۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے نبی اپنی قبر میں بولو زندہ ہے، میرا واسطہ دین ہے زندہ ہے، تو جب زندہ دنیا میں تھے تو صحابہ کا کلمہ سنا ہے، آج جب میرا صلاۃ و سلام سن رہے ہیں میرا کلمہ بھی سن رہے ہیں، تو قیامت کے جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ قیمتی بات ہے جو حکیم الامت حضرت مولانا شبلی صاحب تھانوی نے لکھی ہے، جب کبھی عمرہ کے لیے جاؤ عورتیں ہو یا مرد وہاں پر قریب سے کیا پڑھنا چاہیے، صلاۃ و سلام کے بعد اشہدو ان لا الہ الا اللہ، وہ تو بھئی آپ گواہی دے رہے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی، آپ میرے نبی ہے ان کے سامنے کہہ رہے ہیں آپ، جب وہ تمہارا سلام سن رہے ہیں سلام سن رہے کلمہ بھی سن رہے ہیں، اور پھر فرمایا ریاض الجنت میں جانے کا موقع مل جائے تو دو رکعت پڑھ لے اور یوں کہے اللہ یہاں جنت کے ٹکڑے میں تو لے آیا، توفیق سے مجھے اس اصلی جنت سے محروم رکھا. یہ قیمتی بات جو میرے ذہن میں آئی ابھی تو میں نے آپ کے سامنے. تو انہوں نے کہا حضرت وضو کا پانی نہیں ہے, اب وضو فرما لیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور اس وقت مجھ سے ارشاد فرمایا کچھ مانگ. کیا مانگنا ہے؟ دیکھا یہ دعا لینا ہے حدیث کے الفاظ ہی مسلم شریف کی حدیث نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو امام نووی نے نقل کی ہے. بابو المبادرہ الی الخیرات کے اندر نیک کام میں جلدی کرو, سلی مانگو. کیا مانگو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہوگا کوئی ایسی بات کہو جس کا تمہارا دل کیا تو میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے مانگ لو, دعا کر لو. اس لیے مجھ سے کہا مانگو. کیا مانگو؟ یہ ہوگا. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے مجھے پیش کر دی سلی مانگو کیا مانگنا ہے, ظاہر ہے جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ فرمائش کرو تو آپ جو دعا فرمائیں گے نا وہ بہت قیمتی دعا ہو میرے لیے. اس میں کیا شک؟ قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا؟ خود تہجد کا وقت ہے, اللہ کے نبی سامنے سے کہہ رہے ہیں میں خدمت کر رہا ہوں, مانگو کیا مانگ رہے ہیں. تو ایسے موقع پر آدمی اس وقت امتحان میں پڑ جاتا ہے, کیا کہوں میں, کیا مانگوں, کیا کہوں میں. ہزاروں خواہش تو دل میں ہوتی ہے, میرے دل میں ہزاروں خواہش ہوتی ہے, لیکن یہ تو صحابی تھے, ہماری طرح نہیں کہ چھپر پار کر چپر پھاڑ کر چپر پھاڑ کر چپر لاکھ دے دے کار دے دے مکان دے دے. یہ نہیں نہیں یہ صحابی تھے, حضور صاحب صحبت پائے ہوئے تھے, ان کا دل بنا ہوا تھا, ان کی زندگی بنی ہوئی تھی. اس لیے ساری باتیں چھوڑ کر انہوں نے کیا کہا, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو یہ چیز مانگ رہا ہے جنت میں میرے ساتھ. جنت میں تو انبیاء جاتے ہیں نا, بڑے بڑے یہاں تو امام الانبیاء اور ان کا ساتھ, یہاں تمہاری خدمت میں ساتھ ہوں وہاں بھی ساتھ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا اور کچھ مانگ لے اس کے علاوہ, اس کے علاوہ کچھ اور مانگ. میں نے عرض کیا یہی چاہیے, کچھ اور اور کچھ نہیں. اس لیے کہ ساری چیز کا لب لباب مانگ لیا, خلاصہ مانگ لیا. اصل تو وہی ہے نا, میرا اور آپ سب کا اینڈ کیا ہے, جنت ہے. اور جنت بھی ایسی ہے جو جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں اس میں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا مقام جنت الفردوس ایک نہیں ایسا ہال کی طرح, اس کے اندر میں کتنی کیٹیگری ہے اور اس میں اپیا وہ بھی نیچے کہاں پر. جبکہ جنت الفردوس کے بارے میں صحیح حدیث میں ہے اس کا جنت الفردوس کا روپ یہ عرش کا فلور ہے, جیسے یہ روپ ہے یہ روپ اوپر عرش ہے, نیچے جنت الفردوس سب سے اعلیٰ. اور میرے سب کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرما, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ہاں اللہ کے نبی جب بہران پہ گئے پہلی جنت دوسری جنت تیسری جنت اور جب اخیر میں گئے جنت الفردوس میں تو دیکھ کے فرمایا اس ساری جنت فرشتوں سے بنوائی ہے, جنت الفردوس اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے. فرمایا اللہ کے نبی اس میں کون جائیں گے؟ فرمایا آپ کے ایمان والے جائیں گے. فرمایا کیا گارنٹی ہے؟ آئے اٹھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائیں گے اچھے اچھے عمل کریں گے, جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا یبغون عنها حولا. سورہ کہف کی آخری آیت ہے, اس میں داخل ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اس سے کبھی نکلنے والے نہیں ہے, اس میں جائیں گے. اور پھر اس کے بعد اس کے اندر میں کیٹیگری اس میں امام رکھ دیا تھا اور پوچھا اس مقام میں جانے کی رو رہتا بتا کی اندازہ کرے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز مانگ. تو دنیا اور آخرت کی کوئی دولت اس کا برابر نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ بڑی کیا ہو سکتی. جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاقت اور سب سے اعلی اعلی جنت مل جائے. کچھ اور مانگو نا, کیا کہا کچھ اور مانگو, بات مرتبہ کہ اور مانگو. انہوں نے کہا اور کچھ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کچھ اور بھی, تین بار مانگو کچھ اور مانگو کچھ اور مانگو. اس کی وجہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہتر جانتے ہیں کیوں بار بار کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بھی ایک امتحان تھا نا, بار بار پوچھ رہے تھے کیا مان رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو کام کرو, یہ حدیث ہے فاعنی علی نفسی کا بکثرت, زیادہ نفلے پڑھا کرو, کثرت سجود کرو,
कसरत बुखारी शरीफ में है। सहाबी ने पूछा सबसे अच्छा अमल कौन सा, तूले कयाम या तूले रुकू, तूले सजदा, लंबा कयाम करना या लंबा सजदा करना, दोनों हदीस है। एक मतलब आपने फरमाया लंबा कयाम करना सबसे अच्छा अमल है, एक मतलब फरमाया लंबा सजदा करना सबसे अच्छा अमल है। अब दोनों हदीस पर अमल कैसे होगा, कुर्बान जाऊं इमाम आजम इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर क्या बात है। इब्न हजर अस्कलानी क्या फरमाते हैं बुखारी की शरह में, फरमाते हैं कि दीन में नमाज में दिल बहुत कम लगता, ए टाइम दिवस के दिन को दिल में दिल बहुत क्या कह रहे हैं, नमाज में दिल बहुत कम लगता है, तो उसमें क्या करो, उसमें क्या करो किरात कम करो और सजदे ज्यादा करो, नफल ज्यादा पढ़ो, और रात में दिल ज्यादा लगता है, क्या फरमाया रात में दिल ज्यादा लगता है तो उस वक्त लंबे लंबे सजदे करो अल्लाह के सामने और अल्लाह से मांगो, और उसमें हर नमाज तस्बीह पढ़ो, सलात तहज्जुद पढ़ो, अव्वाबीन पढ़ो, इकरार पढ़ो, इख्लास पढ़ो, जितनी नमाजें अल्लाह के नबी ने पढ़ी यही अमल है। उसके अलावा पढ़ने अमल है, इशराक पढ़ लिया, इख्लास पढ़ लिया, और उसके बाद सारी सुन्नतें पढ़ ली आपने, नमाज से पहले नमाज के बाद नवाफिल पढ़ ली, अव्वाबीन पढ़ ली, तहज्जुद पढ़ ली, उससे ज्यादा क्या है, ये सारी नफले क्या कह रहे हैं कसर के सुजूद है। और इसी को कहा है अल्लाह के नबी जब महराज खत्म कर देता हूँ, महराज में गए तो फरमा अल्लाह के अल्लाह तेरे दरबार में मैं तो आ गया, मैं तो करीब हो गया, लेकिन मेरी उम्मत के लिए तुम कुछ दे दे, वो कैसे तेरे करीब हो गए, कैसे तेरे करीब हो गए, अल्लाह तो अलीमुल बिदात सुदूर है। फरमाया जैसे तुम मुझसे करीब हुई हो ऐसे आपकी उम्मत मेरे करीब होना चाहती है। तो कुरान में अल्लाह ने सूरह इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी की आखिरी आयत में बयान फरमाया, फरमाया कसरत सजदा करोगे तो मुझसे करीब हो जाओगे, और दूसरी जगह फरमाया कि मोमिन की मेराज, मोमिन की मेराज क्या है, नमाज है, नमाज की पाबंदी, इसीलिए साल में एक बार रोजा है, साल में एक बार जकात है, जिंदगी में एक बार हज है, लेकिन नमाज पांच वक्त की है, कि तुम पांच मरतबा आओ अपना चेहरा मुझे दिखा के जाओ अल्लाह के सामने मुसल्ले पर मस्जिद में, तो मेरी माए और बहने अपनी नमाज की पाबंदी करें। ऐसा नहीं कि रमजान चला गया तो अब बस नमाज की भी छुट्टी हो गई, पांच वक्त की नमाज पढ़ें और उससे पहले की सुन्नत उसके बाद की सुन्नत की पाबंदी करें, कि नमाज में कमी कोटाई होगी तो सुन्नत और नवाफिल के जरिए से अल्लाह नमाज फर्ज का सवाब मुकम्मल कर देगा। मुझे और आपको अल्लाह ताला सही बात समझने की और उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। तो ये आखिरी जो मेरी बात थी आखिरी अशरे में कि कसरत से अल्लाह के सामने सजदे करें, इशराक पढ़े, चास करें, गुनाहों से अपने आप को बचाएं और इबादत करें, कुरान तिलावत करें, अल्लाह पाक हम सब की इबादतों को मकबूल फरमावे, मकबूल फरमावे या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, ऐ अल्लाह तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें तेरी ही बातें हैं, और तेरी बात तेरे हबीब की बात को सुनने सुनाने के लिए समझने समझाने के लिए ऐ अल्लाह इस तेरे घर में बैठे हैं, अल्लाह सबका आना और बैठना और सुनना कबूल करना, ऐ तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें हमारी जिंदगी में आ जाए, ऐसे लेना हमारे लिए हिदायत के फैसले फरमा, हम सब के लिए अल्लाह तेरे नबी की प्यारी सुन्नतों के सदके हिदायत के फैसले फरमा, आफियत के फैसले फरमा, रहमत के फैसले फरमा, मगफिरत के फैसले फरमा, हम सब का अल्लाह के रास्ते में दीन का काम करना कबूल फरमा, आज हमारी मस्जिद में जमात आई अल्लाह इनका आना कबूल फरमा, इनका दीन का काम करना कबूल फरमा, अल्लाह तेरे रास्ते में निकलना इनका कदम कदम कबूल फरमा, लोगों के हिदायत का जरिया बना, जहाँ जहाँ जिस मस्जिदों में जाए अल्लाह वहाँ उस मस्जिद और करीब अतराफ वालों के लिए हिदायत का जरिया बना, बल्कि उनकी दुआओं के जरिए पूरी उम्मत के लिए हिदायत का जरिया बना, या रहम राहिमीन हर मस्जिदों को आबाद फरमा और आबाद करने वालों को आबाद फरमा, या अल्लाह हमारी बातों में इखलास नसीब फरमा, हमारे कामों में इखलास नसीब फरमा, हमारी इबादतों में इखलास नसीब फरमा, हमारी नेकियों में इखलास नसीब फरमा, रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा, जो जिस लाइन से परेशान हालत की परेशानियों को दूर फरमा, या अल्लाह या रहमान या रहीम मुबारक मुबारक घड़ियों में
हे अल्लाह, हम तुझसे दुआ कर रहे हैं जो जोहर से पहले ही आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, अल्लाह उसको दुआ करते हैं फलस्तीन और गजा के मुसलमानों के लिए। अल्लाह इनकी जान मान आबू इज्जत की हिफाजत फरमा, उनके ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह उम्मत को दोबारा ईमानी प्लेटफार्म पर खड़ा फरमा, अल्लाह हिदायत वाले रास्ते पर खड़ा फरमा। जितने लोग ईमान से दूर हो चुके हैं अल्लाह उनको ईमान की कुव्वत और ताकत अता फरमा। अपने फजल व करम से, अपने रहम व करम से जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद वा आलिही व सहबिही अजमईन।